मंथन से मिलने के बाद आरव आयु से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो आयु से मिलने के लिए उसी वक्त लाइफ केयर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आरव वहाँ पहुँचा तब आयु ओटी में थी। वहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ था, उसी की इमीडिएट सर्जरी में आयु अयान को असिस्ट कर रही थी। आरव को इस वक्त आयु से मिलना था, इसीलिए वो मिस्टर कपूर के केबिन में गया और उन पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे अभी इसी वक्त डॉक्टर ओबेरॉय से बात करनी है, उसे ओटी से बाहर निकालो। मिस्टर कपूर अपनी चेयर से खड़े हुए और आरव को काम डाउन करते हुए बोले, रिलैक्स मिस्टर खुराना, आई नो आपकी डॉक्टर ओबेरॉय से बनती नहीं है, पर इस वक्त वो ओटी में है, बीच सर्जरी में वो बाहर नहीं आ सकती। आई डोंट केयर, ब्लडी हेल, मुझे अभी इसी वक्त वो मेरे सामने चाहिए, शी इज़ माई वाइफ और मुझे उससे बात करनी है राइट अवे। आरव गुस्से में एक पल के लिए भूल गया था कि उसकी और आयु की शादी अभी ऑफिशियल नहीं थी, उसने आयु को अपनी वाइफ कहकर पुकारा था। आरव की बात सुनकर मिस्टर कपूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। वो चौंकते हुए बोले, आपकी वाइफ? आप डॉक्टर ओबेरॉय के बारे में बात कर रहे हैं ना, डॉक्टर आयुष्का सिंह ओबेरॉय? आप दोनों की शादी कब हुई? उसकी न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी, हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब तुम उसे ओटी से बाहर निकाल रहे हो या मैं खुद जाकर कुछ करूँ? आरव गुस्से में अपना आपा खो रहा था और वो मिस्टर कपूर से काफ़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। मिस्टर कपूर ने उसकी बात पर हामी भरी, आरव कोई तमाशा ना कर दे इसीलिए वो ओटी की तरफ जाने लगे। उधर जाते हुए वो धीरे से बड़बड़ाए, डॉक्टर ओबेरॉय ने आरव खुराना से शादी की है, लेकिन क्यों? इन दोनों की तो बिल्कुल नहीं बनती, कोई अपने ही दुश्मन से शादी क्यों करेगा? और इसका भी समझ नहीं आता, ये हर दूसरे दिन डॉक्टर ओबेरॉय को लेकर तमाशा क्यों करता रहता है? आरव भी डॉक्टर कपूर के पीछे आ रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों ओटी के आगे थे, वहाँ पेशेंट के रिश्तेदार मौजूद थे। उन्हें देखकर मिस्टर कपूर ने आरव से दबी आवाज़ में कहा, प्लीज़ यहाँ कोई तमाशा मत कीजिएगा, आप जानते हैं पेशेंट के रिलेटिव्स यहीं पर हैं, ऊपर से रिपोर्टर भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, अगर आपने कुछ किया तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तुम्हें सच लगता है इस वक्त मुझे इन सबसे फ़र्क पड़ेगा? लगता है तुम कुछ नहीं करने वाले, मुझे ही कुछ करना होगा, आरव ने चिढ़कर जवाब दिया और फिर ओटी के दरवाजे के पास आकर उसे ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगा। अंदर अयान और आयु के अलावा 3-4 नर्सिंग स्टाफ मौजूद थे। दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनकर आयु ने कहा, व्हाट द हेल इज़ दिस गोइंग ऑन, ये कोई घर का दरवाज़ा तो है नहीं जो बाहर खड़ा इंसान नॉक कर रहा है, सिस्टर जाकर बोलो कि ये बिहेवियर यहाँ नहीं चलने वाला, पता नहीं कौन जाहिल है जो ऐसी बेवकूफ़ों जैसी हरकतें कर रहा है, अयान ने सिर हिलाकर कहा और फिर अपना पूरा ध्यान सर्जरी में लगा लिया। आयु भी उसका साथ दे रही थी। आयु के कहने पर नर्स बाहर निकली तो उसने आरव को अपने सामने पाया। नर्स के बाहर निकलते ही आरव ने कहा, मुझे डॉक्टर ओबेरॉय से मिलना है, उसे बोलो अभी बाहर आए। मिस्टर कपूर ने बात को संभालते हुए कहा, ये मिस्टर आरव खुराना है, अगर तुम अंदर जाकर इनका नाम बताऊंगी तो डॉक्टर अपने आप बाहर आ जाएगी। नर्स ने उनकी बात पर हामी भरी और अंदर आ गई। अंदर आने के बाद उसने आयु से कहा, बाहर कोई मिस्टर आरव खुराना है और वो आपसे मिलना चाहते हैं डॉक्टर। नर्स की बात सुनकर अयान और आयु ने एक दूसरे की तरफ देखा। आयु समझ गई थी कि आरव के गुस्से की वजह क्या थी, वो ज़रूर मंथन से मिल चुका होगा। अयान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और एक नज़र पेशेंट की तरफ डाली। उसकी सर्जरी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, बस स्टिचिंग बाकी थी। अयान ने आयु से कहा, मैं स्टिचेस लगा दूंगा, तुम बाहर जाओ, वैसे भी तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। मेरा काम खत्म हो या ना हो, मैं सर्जरी खत्म होने से पहले कहीं नहीं जाऊंगी, वो बाहर वेट कर सकता है, आयु ने जवाब दिया। उसका दिल बहुत घबरा रहा था लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों को नॉर्मल रखा। आयु एक तरफ कोने में खड़ी आरव के बारे में सोच रही थी। आयु ने अपने मन में कहा, ये तुमने क्या कर दिया मंथन, तुम्हारी वजह से आरव इतना गुस्सा है, अभी मैं उसके सामने गई तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, सर्जरी खत्म होने के बाद ही बाहर निकलूंगी, शायद तब तक उसका गुस्सा शांत हो जाए। आयु ये सोचकर बाहर नहीं जा रही थी कि वो आरव को टाइम देगी तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तो वहीं बाहर आरव का गुस्सा आयु के लेट आने की वजह से बढ़ रहा था। लगभग आधे घंटे बाद सर्जरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। आयु बाहर निकली तो दरवाजे के बगल में उसे आरव दिखाई दिया। आरव की आंखें गुस्से से सर्द थीं। आयु को देखते ही उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा। इतने लोगों के सामने आयु ने कुछ नहीं कहा तो वहीं मिस्टर कपूर हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। डॉक्टर ओबेरॉय इतना बेवकूफ़ी भरा डिसीजन लेगी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने आरव खुराना से शादी कर ली, उस इंसान से जो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता। ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी, वरना आरव खुराना जैसे इंसान से कौन शादी करना चाहेगा, मिस्टर कपूर ने सिर हिलाकर कहा। वहीं आरव आयु का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आया था। आरव ने उसे गाड़ी में बिठाया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। आयु ने अभी भी हॉस्पिटल ड्रेस पहन रखा था। आरव गुस्से में काफ़ी रैश ड्राइविंग कर रहा था और उसे कहीं लेकर जा रहा था। कुछ देर तक तो आयु बिल्कुल चुपचाप रही, फिर उसने धीरे से कहा, आरव हम कहाँ जा रहे हैं और तुम इतना गुस्से में? आयु बोल रही थी तभी आरव ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, इस तरह सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की कोशिश मत करो मिसेस खुराना, ये मेरे गुस्से को बढ़ा रहा है। एंड आई टेल यू, जितना तेज मेरा गुस्सा होगा उतना ही तुम्हें सफर करना पड़ेगा। आरव की बात सुनकर आयु की नजरें छुप गईं, आखिर गलती उसकी ही थी। आयु ने जैसे तैसे हिम्मत जताकर थोड़ी देर बाद में फिर से कहा, आरव प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। आयु की बात सुनकर आरव ने गाड़ी के ब्रेक लगाए, स्पीड फास्ट होने की वजह से एक झटके में गाड़ी रुकी। आरव आयु की तरफ मुड़ा और उसके कंधे कसकर पकड़कर चिल्लाकर कहा, क्या एक्सप्लेन करोगी तुम मिसेस खुराना, और किस किस बात की एक्सप्लेनेशन दोगी? सबसे पहले तुमने मुझे गलत समझकर मुझसे शादी कर ली, मेरी लाइफ बर्बाद करनी चाही, मेरे इमोशंस के साथ खेला, उसके बाद उस मंथन आहूजा को मेरे पास भेज दिया वो सिली से पेपर्स लेकर। तुमने उसके साथ क्या डील की थी? आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये शादी तोड़कर तुम्हें किसी और के पास जाने दूंगा? आरव ने गुस्से में अपनी सारी भड़ास निकाल दी। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम मुझे एक चांस दो, आयु ने धीरे से कहा। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी, इस वक्त उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो रहा था। कुछ पल रुककर आरव ने आयु को छोड़ते हुए कहा, यू नो व्हाट मिसेस खुराना, तुम्हारी प्रेजेंस मुझे तकलीफ दे रही है, तुम्हें एक पल के लिए भी झेलना मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, सो गेट आउट ऑफ माई कार। पर आरव, आयु अपने बात कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन आरव फिर से उस पर चिल्लाते हुए बोला, आई सेड गेट आउट मिसेस खुराना। आयु गाड़ी से बाहर उतर गई, फिर उसने इधर उधर देखा तो वो एक सुनसान जगह पर अकेली खड़ी थी। ना उसके पास उसका मोबाइल था और ना ही बाकी के जरूरत का सामान जिससे वो वापस वहां से जा सके। आसपास कोई लिफ्ट देने वाला भी मौजूद नहीं था। आरव आयु को ओटी से डायरेक्ट अपने साथ लेकर आया था, इसीलिए उसे कपड़े तक बदलने का मौका नहीं मिला था। उसके कपड़ों पर खून के छींटे लगे हुए थे। इधर उधर देखने के बाद आयु आरव को समझाने के लिए गाड़ी के पास आने लगी। तभी आरव ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आयु पीछे से जोर से चिल्लाई, प्लीज डोंट डू दिस आरव, मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगी, मुझे तो ये भी नहीं पता ये जगह कौन सी है। आरव प्लीज स्टॉप।
आयु चिल्लाती रह गई पर आरव पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गाड़ी के साइड मिरर से उसे चिल्लाते हुए देख रहा था और अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। आरव ने आयु को छोड़ा था, उस वक्त रात के लगभग 8 बज रहे थे। आयु को आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो वो काफी डर भी गई थी। ओह गॉड, पता नहीं उसने मुझे कहाँ छोड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ से घर कैसे जाऊँ? खुद से बातें करते हुए आयु रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव खुद नहीं जानता था कि गुस्से में ड्राइव करके वो आयु को कहाँ छोड़ चुका है। वहीं लगभग 1 घंटे बाद आरव घर पहुंचा। गौरवी जी आज हॉस्पिटल गई थी और उनकी रिपोर्ट आयु ही घर लेकर आने वाली थी। आयु का इंतजार करते हुए गौरवी जी लिविंग रूम में टहल रही थीं, तभी आरव वहां पहुंचा। उन्हें परेशान देखकर आरव ने पूछा, कितनी बार कहा है दादी आपसे कि आप रेस्ट किया करें, आपके लिए ज्यादा वॉक करना सही नहीं है, आप मेरा बिना वेट किए आराम कर सकती हैं, मुझे घर ही आना होता है। सॉरी मिस्टर खुराना, आज मैं आपका नहीं आपके मिसेस खुराना का वेट कर रही थी, एक्चुअली उसने मुझे हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट कराने के लिए बुलाया था और उसकी रिपोर्ट लेकर वो शाम तक आने वाली थी। हॉस्पिटल में कॉल किया तो पता चला कि वो कब की वहां से निकल चुकी है, लेकिन अब तक घर नहीं आई ना ही कॉल पिक कर रही है, बस उसी को लेकर थोड़ी परेशान थी। वैसे तो वो लापरवाह नहीं है लेकिन आई होप कि किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। गौरवी जी ने आरव को सब कुछ बता दिया। मैं कबीर को कॉल करके बोल देता हूँ, वो आपकी रिपोर्ट ले आएगा, आरव ने जवाब दिया और कबीर को कॉल करने लगा। तभी गौरवी जी ने उसका हाथ पकड़ा और आंखें दिखाते हुए कहा, कैसे हस्बैंड हो तुम, अभी भी रिपोर्ट की पड़ी है, यहाँ तुम्हारी वाइफ का कोई अता पता नहीं है। अभी अभी आपने कहा ना, वो काफ़ी समझदार है और लापरवाह नहीं है, तो जहाँ भी है खुद आ जाएगी, आरव ने काफ़ी रूखे तरीके से जवाब दिया। गौरवी जी को उसके बर्ताव पर हैरानी हो रही थी, वो उसे कुछ कहती उससे पहले आरव अपने कमरे में चला गया। वो इस वक्त गौरवी जी से दो बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अंदर आते ही आरव ने नींद की टैबलेट ली और सोने की कोशिश करने लगा। वहीं गौरवी जी को आयु की और ज्यादा टेंशन होने लगी। उन्होंने कबीर को कॉल करके आयु के बारे में पता लगाने को कहा, लेकिन कबीर ने भी इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर आयु किसी मुसीबत में होती तो गौरवी जी से पहले आरव से आयु का पता लगाने का बोलता, लेकिन आरव की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना देखकर कबीर भी बेफिक्र था। वैसे भी वो आयु को पसंद नहीं करता था।